देखते हैं हम तफसीर, और आज हम चौथा किस्सा देखेंगे सूरतुल कहफ में। और इससे पहले हमने जो तीसरा किस्सा देखा था, आपने उसके ऊपर कुछ सोच विचार की और आपने देखा कि ये तो चंद वाकयात हैं जो इस किस्से में बताए गए हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें बता भी दिया कि इनमें कितनी बड़ी भलाई थी, कितनी बड़ी खैर थी। लेकिन आपने कभी सोचा कि कितने ही सारे वाकयात मेरी और आपकी जिंदगी में चल रहे होंगे इस वक्त, जिनके बारे में हम नहीं जानते और ना शायद कभी जान भी ना सके कि उनमें कितनी खैर और भलाई है, लेकिन हमें वो इतनी बुरी बातें लगती हैं और इतना उनके अंदर हमें लगता है कि ये क्या हो गया, ये कितना शर है इसमें। यानी आप सोचें कि इस वाकये में, इस किस्से में इवन इतनी बड़ी बात, जिससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि औलाद की दुनिया से चले जाना, वालदैन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती किसी इंसान के लिए, और उसमें भी कोई खैर थी। तो अगर उसमें कोई खैर हो सकती है तो बाकी जो वाकयात हैं उनमें कैसे नहीं होगी। इसमें कितना बड़ा सबक है, तकदीर के फैसलों की समझ नहीं आएगी हमें, क्योंकि ये इल्म अल्लाह के पास है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं था। देखें, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे इतने बड़े पैगंबर हैं, उनके पास भी ये इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस चीज को भूल जाते हैं और बेचैन होने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि ये तकदीर के फैसले हैं जिनका इल्म मेरे पास नहीं है। बस हमें ये कहना चाहिए, वाला आसी इलाका अमर, अल्लाह मैं तेरी किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगी। बस अब देखिए, पहला जो किस्सा था उसमें तो शायद चांस है कि कोई कश्ती वालों को समझ आ ही गई हो, कि बाद में हो सकता है उनको पता चल गया हो कि भाई हम बच गए हैं, तो इसके अंदर कितनी बड़ी खैर थी कि हमारी कश्ती में सुराख था। मगर जो बच्चे की वफात का है या जो दीवार का खड़े करने का है, वो तो शायद किसी को पता भी ना चला हो दीवार खड़ी हुई है, किसी ने आके इसको सही किया है, या जो वो वालदेन है उनको हो सकता है सारी जिंदगी वो मार होती रही हो कि मेरा बच्चा क्यों चला गया। तो ये बच्चा अपने अपने लिए भी, अपने वालदेन के लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए एक मसला बन सकता था, क्योंकि जब कोई इंसान सरकश नाफरमान होता है तो पता नहीं कितने लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसी के रास्ते पे चलने लगते हैं, उससे मुतासर हो जाते हैं। तो उसकी आखरत तो बिगड़नी ही थी, उसके वालदेन की भी बिगड़ जानी थी, सोसाइटी की भी बिगड़ जानी थी। तो हम कदर नहीं करते, अगर हम जान जाएं तो शायद शुक्र ही अदा कर लें अल्लाह ताला का हर हाल में। और एक बहुत अहम हमें जो बात उसमें पता चली थी, हो सकता है आपने सोची हो इस चीज को, कि जो भी खैर है ना और वो डिले हो रही है, अभी तक नहीं मिल रही मुझे, तो उसके अंदर भी कोई अल्लाह ताला ने राज छुपाया होता है, उसके डिले होने में, किसी चीज के भी डिले होने में। जैसे कोई कह दे कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, बहुत सारी लड़कियों के ईमेल्स आते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान है, वालदैन परेशान है, क्या करें। तो या कोई कोई कहता है कि मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही, कब से दुआएं कर रही हूँ क्यों नहीं हो रही, या कोई जॉब के लिए, या किसी का बच्चा बिगड़ गया तो वो कहता है कि क्यों नहीं ये सही हो रहा, क्यों इसमें डिले आ रहा है। तो कभी आपने सोचा कि इसमें भी कोई खैर ही होगी, इस देर होने कहाँ से ये पता चला। हाँ, ये जो तीसरा वाकया था उसमें उन बच्चों को, उन यतीम लड़कों को, उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजारी, उनको खजाना तो दफन था, तो पता नहीं कितनी गरीबी मिस्कीनी के अंदर जिंदगी गुजारी हो उन्होंने, कितने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी हो। तो वो सोचते हो कि हाय पहले ही मिल जाता हमें खजाना, ये तो हमें इतनी देर बाद मिला। तो जो भी खैर है ना, उसका डिले होना ये अल्लाह ही जानता है कि क्यों हो रहा है, मगर ऐसे मामला में भी हमारा क्या हाल हो जाता है ना। और फिर वो काना अबू हुमा सौलेहा जो था ना, वो एक बाप ही था जो नेक था। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई कोई आदमी कह सकता है मेरी बीवी नेक नहीं है, कितना बच्चों पे ऐसा असर होता है, या औरत कहती है कि काश मेरा शौहर नेक होता तो ये ना होता। तो आप ये देखें कि दोनों तो नेक हों तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो माँ या बाप आप उनको बदल तो नहीं सकते, तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने यहाँ एक की बात की है, अबू हुमा, तो बाप हो या माँ हो, एक ही खानदान में से एक भी अगर सही हो जाता है तो इसका मतलब वो भी काफी है। यहाँ पे बाप है, हो सकता है किसी जगह माँ नेक हो, ठीक है। तो नेकी में कभी भी इस चीज को सोचे नहीं कि जो है ना इसका क्या फायदा, ये होना चाहिए था नेक, मेरे नेक होने का कोई फायदा नहीं, नहीं ठीक है। आप उसके साथ डील कर रहे हैं जो बड़ा कदरदान है, वो आपकी नेकी को आपकी नस्लों में चला देगा। और देखिए आप यहाँ पे तस्तोतिया और तस्तिया दोनों लफ्ज आए हैं, ये आपने नोट किया कि एंड में जो 82 आया था इसमें तस्तिया आया है, और इससे पहले 78 में मालम तस्तोतिया आया है। हालांकि दोनों का माना एक ही है, जैसे हम कह देते हैं ना कैन नॉट को कैंट, इज नॉट को इजंट, तो जरा शॉर्ट कर देते हैं ना, या मैथमेटिक्स को मैथ, बायोलॉजी को बायो, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है ना। लेकिन जब मूसा को भी समझ नहीं आ रही थी तो ये अभी खिजर अलैहि सलाम के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बात थी, तो तस्तोतिया आया, और बाद में जब समझ आ गई, खुल गई बात, आसान हो गई, तो तस्तिया आया। क्योंकि जहां पे भी अरबिक के अंदर एक भी लेटर का इजाफा होता है ना, उस चीज में शिद्दत आ जाती। तो और उम्मीद है कि आपने अदब भी सीखा होगा अल्लाह ताला का, कि कोई भी बुराई शर जो पहुंचती है उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ ना किया करें, ठीक है। तो आज का लेसन देखते हैं आयत नंबर 83 से। वयसअलूना का अम ज़ुल्करनैन, और वो सवाल करते हैं आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में। यहूदियों ने आखिरी जो सवाल किया था नबी अलैहिस्सलाम से वो क्या था कि आप उस ट्रेवलर के बारे में बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक ट्रेवल किया, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अस्हाबे कहफ का बताया, और आपको पता है रूह के बारे में सूरह इसरा में आ चुका है, और अस्हाबे कहफ के बाद फौरन ज़ुल्करनैन का किस्सा नहीं आया, बाग वालों का किस्सा आया, फिर उसके बाद मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, और इसके बाद यहाँ पे ज़ुल्करनैन का आया। हालांकि उनके नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उनको चाहिए था कि उनके बारे में पूछते और उस किस्से में कितने सबक हैं, कितनी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन उन्होंने उनका नहीं पूछा और इनका पूछ रहे हैं। और अल्लाह ताला उनके किस्से को पहले लेकर आया, इस किस्से को बाद में लेकर आया, दोनों में सफर है। उस किस्से में इल्म के लिए सफर है, इस किस्से में जमीन में हकूमत के लिए सफर है, सफर दोनों ही है। मगर इल्म का सफर देखिए अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया हकूमत के सफर से, इससे पता चलता है अल्लाह ताला के हाँ कद्रो कीमत इल्म के सफर की कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ुल्करनैन का अब किस्सा आया है, आप देखें कि पहले किस्से के अंदर एक काफिर था जो गालिब था और जो मोमिन थे वो कमजोर थे, इसमें आप देखें ये मोमिन बादशाह ये गालिब है और इसमें काफिर कमजोर होंगे। मुफसिर बहुत बड़े हैं मुजाहिद, वो लिखते हैं कि सिर्फ चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की है, इनमें दो मोमिन हैं और दो काफिर। कौन है दो मोमिन, आपको कुछ पता, क्या कहते हैं आप लोग? एक तो सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक ज़ुल्करनैन, और दो काफिर कौन से हैं आपके ज़हन में, किसका नाम आता है? एक नमरूद और एक बुख्त नसर जो बेबलोनियों का बादशाह था। इनके अलावा जो बादशाह बहुत सारे आए हैं मगर पूरी दुनिया पे नहीं किसी ने हुकूमत की। बाज़ लोग कहते हैं कि ज़ुल्करनैन सिकंदर आजम था, मगर ये बिल्कुल बात सही नहीं है, इसलिए कि सिकंदर आजम जिसको कहते हैं वो मुशरिक बादशाह था, उसके तो बारे में आता है, और उसका उस्ताद एरिस्टोटल था अरस्तू, वो भी मुशरिक था बुत परस्त था, तो इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये पता चलता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं ज़ुल्करनैन, और ये मुसलमान थे, इन्होंने बाज जगह पे आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, काबा का तवाफ किया था। तो ऐसा नहीं है कि जुल्करनैन सिकंदर आजम हो। और फिर बाज ने कहा कि वो कोई चाइनीज है, और वॉल ऑफ चाइना जो है वो इब्ने आशूर अपनी तफसीर में लिखा कि वॉल ऑफ चाइना जो है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वॉल नहीं है जो याजूज माजूज की बनाई गई है। ये बिल्कुल बात सही नहीं है। अच्छा, बाज कहते हैं वो साइरस बादशाह था जो आया था, तो ये भी नहीं सही लगता क्योंकि ये सारे अकीदे में सही नहीं थे। बाज कहते हैं यमन का बादशाह था, इसलिए कि यमन वालों का नाम जू या लकब कह सकते हैं, जू से शुरू होता है तो ये भी जू है। तो वल्लाहु आलम, हमें नहीं ये इतना ज्यादा पता चलता कि ये कहाँ से था, और इसको इतनी ज्यादा हमें तहकीक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल बात ये है कि वो एक मुत्तकी आदमी था और बड़ा इंसाफ वाला बादशाह था। और हमें पता चलता है बाज कहते हैं कि वो नबी था, बाज कहते हैं नहीं नबी था, तो ज्यादातर यही है कि वो नबी नहीं था। जिन्होंने कहा कि वो नबी था, वो इसलिए कहा कि आगे आएगा कुल ना, हमने उससे कहा, तो हमने उससे कहा से उन्होंने ये सोच लिया कि वो नबी ही होगा इसीलिए। हालांकि देखें, जो कुल ना की बात आई है ना, तो वो तो बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ, कुल नदखुलू हादिल करिया, हमने उनसे कहा कि दाखिल हो जाओ, तो उनके पास कोई, वो तो नबी थोड़ी थे। वो उम्मे मूसा को भी इल्हाम हुआ था, तो शहद की मक्खी को भी अल्लाह ताला ने वही की, तो ये वो इससे कोई नबी नहीं हो जाता, ये तो इल्हाम है जो अल्लाह ताला दिल में डालता है। ठीक है, तो वो पूछते हैं आपसे जुल्करनैन, और वो पूछते हैं, हाँ ये वाली बात भी, वो पूछते हैं यहाँ पे, इससे पहले जो किस्से आए हैं उसके अंदर ये लफ्ज नहीं आया, वो पूछते हैं आपसे। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये किस्सा उनके पूछने के ऊपर यहाँ बयान किया है, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया जो मैंने आपको वजह बताई कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से का पूछना चाहिए था, वो तो तुमने पूछा नहीं, और इसके बारे में पूछते हो तुम, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात, इसलिए यस अलूना का। और देखिए, हम जैसे पहला किस्सा हमने क्या देखा था, ईमान की आजमाइश का, कि इंसान की ईमान की, जब दीन की आजमाइश आती है ना, कितनी मुश्किल होती है। फिर दूसरा किस्सा हमने क्या देखा था, माल की आजमाइश का। फिर तीसरा किस्सा हमने क्या देखा, इल्म की आजमाइश। और अब ये चौथा किस्सा है हुकूमत इकतदार का जो फितना है, कि जब इंसान के पास पावर आ जाती है तो फिर क्या होता है। तारीख गवाह है इस बात पे कि जितने लोग पावर पा जाते हैं, अक्सरियत उनमें से करप्ट हो जाती है, और मजीद पावर, मजीद वो जुल्म और सितम, तकब्बुर और आपे से बाहर हो जाना, क्योंकि जब पावर आती है ना, तो उसके साथ ही दौलत, शोहरत, औरत और अथॉरिटी, ये सब आ जाते हैं जब इंसान के पास हुकूमत आती है। और इनके साथ बहुत लोग, कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं। ये कहना बड़ा आसान है। वो कहते हैं ना कि एक जगह आता है कि एक बंदा ने हर वक्त कहता रहता था कि हमारे हुक्मरान ऐसे, और इनको ऐसे करना चाहिए, और इनको ऐसे करना चाहिए, और ये तो हड़प कर जाते हैं माल, और ये ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि हम हर वक्त ही बोलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे को आजमा लिया, उसको छोटे से जमीन के टुकड़े की हकूमत दे दी, तो वो उसमें उसने इतना जुल्म किया कि वो जो बड़ा हुक्मरान था ना, बड़ी मुमलिकत का हुक्मरान, उससे भी ज्यादा जुल्म में बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ा फितना है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया कि कोई बाबुस्सलातीन या बादशाहों के दरवाजों पे जाए, क्योंकि ये तबाही की तरफ ले जाता है इंसान को। बड़ा अच्छा भी आदमी होगा ना, वो भी बड़ी नेक नियति से शुरू करेगा, लेकिन जब इस फितने में पड़ जाता है, संभाल नहीं सकता खुद को। इसलिए आप देखिए, सहाबा कराम ना, सुभान अल्लाह, यानी उनकी जिंदगी हमारे लिए उसवा है ना, तो उनको देखें कि वो अल्लाह हु अकबर इतना बचते थे ना इक्तदार से, कि वो नहीं चाहते थे हमारे हमें ना मिले। तो उमर को जब यानी खिलाफत दी गई और उन्होंने आगे एक सहाबी को एक ओहदा दिया, किस जगह का गवर्नर बनाया था गालिबन, तो वो इनकार करने लगे, मुझे ना ये दे, मुझे ये जिम्मेदारी ना दे। तो कहने लगे मुझे, मेरे ऊपर बोझ डाल दी और खुद इसे बच रहे हो। नहीं, उनके लिए ये बोझ था, उनके लिए ये मुश्किल थी। जब अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को कहते हैं, जब उनको खिलाफत मिलने लगी, तो उस वक्त वो कहते हैं उमर मुझसे बेहतर है, इनको खलीफा बनाओ। उमर कहते हैं नहीं, मैं नहीं, ये मुझसे बेहतर है, इनको बनाओ। अब आप देखें, और आज हमारा क्या हाल है कि लूट खसूट के हम कहते हैं बस हुकूमत मिल जाए, जो आता है वो कहता है मेरे हुकूमत से चिमट जाऊं और मुझे इस बस मुझे सरबरा बना दो। अगर वाकई इनको इस्लाम की सही समझ हो तो ये बचे इससे कि अल्लाह ताला के हाँ इसका बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। और खास तौर पे जो मांग के हुकूमत लेता है ना, तो फिर हदीस में आता अल्लाह ताला उसको उसके ही हवाले कर देता है। जब लोग बनाते हैं आपको कि खुद आपको पकड़ पकड़ के लाएंगे कि आप बनो, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ आती है। पता है इमाम मेहदी, वो खुद नहीं बनेंगे, लोग उनको बनाएंगे, वो इससे बच रहे होंगे, वो लोग उनको कहेंगे कि नहीं आप हमारे इमाम बने, आप हमें लीड करें। तो इस्लाम का तो ये नजरिया ही नहीं है कि मांग के लिया जाए कोई ओहदा, हुकूमत, पावर। और ये बिल्कुल उलट है, ये जमहूरियत, जमहूरियत का जितना बात की जाती है ना, उससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जमहूरियत के अंदर तो क्या है, मांगा जाता है, मुझे दे दो वोट वरना पता नहीं मैं क्या हो जाएगा, मेरा मैं ही बेस्ट हूं और बाकी सारे बुरे हैं। दूसरी तरफ इस्लाम तो बिल्कुल इससे उलट कहता है। तो अल्लाह अकबर। तो हमें पता चलता है कि ज़ुल्करनैन जो था ना, वो एक बड़ा ही आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह था, और इसका नाम ज़ुल्करनैन क्यों है? कर्ण का मतलब होता है हॉर्न, सींग, नहीं जैसे हम कहते। तो खैर इसके सर पे सींग तो नहीं थे, मगर उसके बाज मुफसरीन कहते हैं कि इस दो चोटियां बनाता था। बस पुराने जमानों के अंदर लोग होते थे ना, दो चोटियां बनाता था, तो यहां से वो शुरू होती थी, तो वो इसलिए उसको कर्नैन, दो कर्णों वाला कहा गया। ठीक है, बाज ने कहा कि नहीं ये वजह नहीं थी, वो एक हेलमेट पहनता था जिसपे दो सींग जैसी चीजें नहीं लगी होती, जैसे आपने भी ऐसे हेलमेट देखे होंगे, तो वो थे इसलिए। बाज कहते नहीं इस वजह से नहीं, वो चूंकि मशरिक से मगरिब तक इसकी हुकूमत थी, तो एक कर्ण मशरिक और एक कर्ण मगरिब। बाज कहते नहीं इस वजह से नहीं, बल्कि ईरान और यानी फारस और रोम पे इसकी हुकूमतें थी, इसलिए इसको ज़ुल्करनैन का तो दो कर्ण होंगे। बाज कहते हैं कि कर्ण मतलब सेंचुरी के लिए भी आता ना, एक जमाना, तो दो कर्णों में यानी इसकी बहुत लंबी इसको उम्र मिली थी, तो दो नस्लें इसने देखी थी, तो इसलिए। बाज कहते हैं कि इसने लोगों को दावत और तबलीग की, तो उन्होंने इसको इतना मारा कि उसके सर में दो जैसे लंप से बन जाते हैं ना, उस तरह ये दो ऊपर बन गए थे, तो जिसकी वजह से कहा गया। बार क्या सारी ही तफासीर मिलती हैं। अब असल बात ये है कि जो भी वजह हो, मगर ये पता चलता है कि अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा था वो। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में रख दिया कि रहती दुनिया तक लोग उसके बारे में पढ़ते रहें। हालांकि कितना बड़ा उसको इक्तदार मिला, कितनी बड़ी हुकूमत आप आगे देखेंगे अभी, लेकिन वो कैसा बादशाह था, इससे हमें पता चलता है कि जब हम इस हुकूमत, इकतदार, पावर, चलो इकतदार आपको पूरे मुल्कों का नहीं मिला, कहीं तो आपको कहीं लीडरशिप मिली होगी, कहीं आपको कोई पावर होगी, चाहे अपने घर की हुकूमत आपके जिम्मे हो, आपके पास हो, तो उसके अंदर भी इंसान कैसे रहे? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ये नहीं कि हुक्मरान बिगड़ जाते हैं, पावर बंदे को, चाहे क्लर्क भी है ना ये, चाहे कोई छोटी सी जगह का, वो एक चार फाइलें ही उसके पास आती हैं, वो उसका भी बादशाह बन के बैठ जाता और कहता मेरे से ज्यादा बड़ी की चीज ही कोई नहीं। तो वो पावर कहाँ पे भी आ जाए, वो इंसान को अक्सर बिगाड़ देती है। तो ऐसे बादशाह से हमें सीखने को कहा गया जिसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ भी नवाजा था, लेकिन सुबहान अल्लाह के वो बंदा कैसा रजुले मोमिन था, वो कैसा बंदा था कि उसके अंदर कोई करप्शन नहीं आई, उसकी बातें कैसी हैं, मतलब इंसान इंप्रेस हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, कह दीजिए किसको कहा गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी आप कह दें सअत्लु अलैकुम मिन हुज़िक्रा, मैं अनकरीब पढ़ के सुनाऊंगा तुमको इसमें से, यानी उसके किस्से में से, ज़ुल्करनैन के हालात में से। ज़िक्रा, ज़िक्रा क्या होता है? ज़िक्रा का मतलब होता है याद दहानी, रिमाइंडर, यानी उसकी। और ज़िक्रा उसको भी कहते हैं जिस चीज से हम सबक लेते हैं, यानी ऐसी बात जो याद दहानी हो जाए, क्योंकि ये बातें भूल बहुत जल्दी जाती हैं। वो बातें जो भूल जाती हैं ना, उनकी याद दहानी हो जाए, वो अल्लाह ताला बताएगा। और दूसरी बात ये कि जिसके अंदर सबक है, जिसमें फायदा है आपको, और ना उसकी जिंदगी तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी, वो पता नहीं किधर किधर गया होगा, किधर उसने ट्रेवल किया होगा, किधर वो रहा होगा, तरह तरह के लोगों से मिला होगा। पूरी जिंदगी की कहानी बताने शुरू कर दे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरी किताब ही उसके ऊपर चली जाएगी। लेकिन कहा गया मिन हु, उसमें से कुछ, मिन तबी अजिया है, यानी बाज उसमें से कुछ जिक्र मैं तुमको सुनाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बातें आने वाली हैं वो जल्दी भूल जाती हैं, और वाकई भूल जाती हैं, क्योंकि याजूज माजूज का भी जिक्र आएगा जो हमें बहुत भूल जाता है। आखिरी जमाने में जिन्होंने निकलना है तो उनकी याद दहानी भी जरूरी है। फिर पावर के अंदर रह के अपने आप को संभाल के रखना, ये याद दहानी हमेशा ही रहनी चाहिए, है ना। हम तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं ये, बस मेरे पास पावर आ गई, मुझे तो लगता है मुझे सारी जिंदगी बस अब, या कभी जानी नहीं है मेरे से, अब कभी टेबल्स टर्न ही नहीं होंगे, मैं ही इसी तरह पावर में रहूंगी, तो ये बड़ी जल्दी भूल जाता है। तो इसमें जिक्र है, जैसे कहते हैं तज़कीर, याद दहानी, तो जिक्र है इसके अंदर, याद दहानी है इसके अंदर। ठीक है, इन्ना मक्कन्ना, बेशक हमने इख्तदार दिया हमने उसको, फिल अर्द जमीन में। मक्कन्ना का मतलब होता है पावर दे दी, बादशाहत दे दी, ठीक है, इस्टेब्लिश कर दिया उसको। तो इसका मतलब जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसको पावर दे दी, तो कितना, कितनी पावर होगी उसके पास। वह आ तही ना, और दी दिए हमने उसको, इससे पहले किसके लिए आता है कि हमने उसको ये दिया, हमने उसको ये दिया? जो बाग वाला था ना, उसके लिए भी तो आया था, हमने उसको दिया, मगर उसने इस चीज को पहचाना नहीं था। और आप ऑन द कॉन्ट्ररी ज़ुल्करनैन की बात देखेंगे ना, तो उसने पहचान लिया था, क्योंकि उसने आगे जाके आपको आएगा, वो कहता है कि मेरे रब की रहमत है ये सब। जबकि वो जो बाग वाला था ना, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी फरमाया कि हमने उसको ऐसा बाग दिया, ऐसी उसके अंदर नहरें थी, हमने उसके लिए नहर फाड़ दी, हमने उसके अंदर ऐसी चीजें उगाई, लेकिन उसने इस चीज को पहचाना नहीं। तो देन अल्लाह ही की होती है, जो नियमतें होती है ना वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं सारी की सारी। हाँ ये है कि बाज इंसान पहचान लेते हैं, इसको रियलाइज कर लेते हैं कि ये मेरी ताकत और कुव्वत नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत है मेरे ऊपर, और बाज नहीं रियलाइज करते। ठीक है, फिर आपने वो भी अंजाम देख लिया ना, जब रियलाइज नहीं किया, नाशुक्री की, ये भी नाशुक्री होती कि इंसान नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करे, अपनी तरफ करे। मैं मुझे तो यहां इतना मिल गया है, मुझे तो वहां जाके भी इतना मिलेगा, यही कहा था ना उसने, अगर कयामत आई भी तो मुझे तो वहां पे भी मिल जाऊ। ठीक है, तो ये जो रवैया होता है अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता, और जिसने नेमत दी है वो नेमत छीन भी सकता। तो हमने उसको दिया मिन कुल्ली शैन, हर चीज में से, सबाबा असबाब जराइस रिसोर्सेज दिए थे हमने उसको। अब देखिए एक बादशाह के लिए कौन से रिसोर्सेज जरूरी हैं, हर चीज में से। हर चीज में से मतलब क्या, कि इल्म में से भी, इल्म होना चाहिए ना, जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आपके पास इल्म भी होना चाहिए, आर्मी भी होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, आपके अच्छे फॉलोअर्स भी होने चाहिए, तभी एक बादशाह कामयाब होता है। आपके पास इंजीनियरिंग का भी पूरे सारी पूरे मतलब माहिरीन होने चाहिए, आपके पास नेविगेशन के भी होने चाहिए, उस वक्त कोई गूगल मैप तो था नहीं, फिर आपके पास ट्रांसलेटर भी होने चाहिए, मतलब जो सारी चीजें एक बादशाह को कामयाब बनाने के लिए हैं वो सब उसके पास थी। अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ था इन चीजों से, ठीक है, हर तरह के टूल्स, यानी उसको मुहैया किए हुए थे, मिलिट्री भी, माल असबाब भी, आर्किटेक्चर भी, इंजीनियरिंग भी, उलमा भी, यानी हर तरह की चीजें, ठीक है। अच्छा आप देख लें, हर तरह की चीजें उसको मिली हुई हैं, तो आप देखिएगा कि फिर भी उसके अंदर तकब्बुर ना होना, फिर भी उसको अपने आप को बड़ी चीज ना समझना बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमारे पास थोड़े सा भी कुछ ज्यादा आ जाए ना दूसरों से, तो हमारी हालत क्या होती है, गर्दन में सरिया आ जाता है, भी किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े बन बन के बैठते हैं, मेरी ये प्रोफेशन, मैं ये प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हूँ, या मेरा घर इतना बड़ा है, या मैं फलां गाड़ी चलाती हूँ, या मेरे तो जहाज चलते हैं, या मैं तो मिलियनेयर हूं। फिर उसके बाद आप मिजाज देखें इंसानों के कैसे बदलते हैं, तो आप, लेकिन बेहतर ये हम दूसरों का ना सोचे, हमारे पास जो चीजें हैं ना उनके ऊपर हम नजर करें, हमें भी तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, क्या चीज नहीं हमें दी हुई, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या आजी है उन चीजों को पाके, हो सकता है हम भी अपने दोस्त है बाद में एक बादशाह की हैसियत रखते हो, यानी हम उनमें सबसे ऊपर हो, अपने रिश्तेदारों में हम माली तौर पर या असबाब में या हम औलाद में या हम और घर बार में उनसे ज्यादा हो, फिर हमारा क्या रवैया है, ठीक है। मैं आपको चाहती हूँ कि आप एक जुल्करनैन की कहानी सुन के ये ना सोचे जो उसके पास इतना था, हमारे पास कौन सा इतना है, हमारे पास नहीं भी कुछ होता ना तब भी गिनने लगे तो बहुत कुछ है, और तकब्बुर के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ही मुमलिकतों का बादशाह ही होगा तो तकब्बुर होगा, जिसके पास को थोड़ा एक घर बार है उसके पास नहीं हो सकता, नहीं, जितना कुछ भी इंसान के पास होता है वो उसके अंदर ही तकब्बुर करने लगता है, मसला ही तकबर का ये है ना कि गुरूर, गुरूर धोखा है, धोखे में पड़ जाता फअतबा सबाबा, तो उसने पैरवी की सबाबा असबाब की, यानी उसने इन असबाब से काम लिया, इस्तेमाल किया इनको, ठीक है, यानी जो भी उसकी आर्मी थी, जो भी उसके अफराद थे उनके साथ वो चल पड़ा, इनको इस्तेमाल किया, यानी अब लेके इनको चल पड़ा है ना, सारी जो भी जिसके पास पूरे चीजें थी, हत्ता यहां तक के अब उसने एक फर्स्ट अपना जो जर्नी किया है, सफर किया है, उसके बारे में आ रहा है। हत्ता इदा बलग मगरिब अश्शम्स, हत्ता के जब वो पहुंच गया सूरज के गुरूब होने की जगह, वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमीअतिन, तो वो गुरूब उसने पाया उसको कि वो गुरूब हो रहा था, फी आइनिन हमी अतिन, ऐसे चश्मे में जो हमी अतिन, इसकी दो किरात हैं, ठीक है, एक तो यही है जो हमी अतिन है, यानी एक मगी सा गदला सा पानी जो होता है, वो जैसे आप कहें कि मडी कीचड़ वाला, ठीक है, तो वो और दूसरी इसकी किरात है आइन इन हामियतिन, कि ऐसा चश्मा जो उबलते हुए पानी वाला हो, शायद कोई लावा होगा, या कहते हैं शायद ये ऐसा हो कि उबल रहा है। अब देखें जब सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, और आप समुन्दर के किनारे खड़े होकर देखें, तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे सूरज समुन्दर में गुरूब हो रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, तो यानी वो चलते चलते फार वेस्ट में चला गया, जहां पे आगे पानी था, ये चश्मा था, और वो ऐसा चश्मा था, और उसके अंदर जैसे मतलब लगता है कि गुरूब हो रहा है सूरज इसके अंदर, बड़ी ये खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, ये भी बड़ा एक जबरदस्त मंजर होता है, यानी अभी इसके आगे पास पानी था, इसके आगे वो नहीं जा सकता था, बस कहते हैं ये ब्लैक सी है इसलिए कि इसका पानी ऐसा है, और वो उस एंड पे आ गया, यानी जमीन के अब आगे उसके ऐसी थी कि वो आगे नहीं जा सकता था। वजदा इंदहा कौमन, तो उसने पाया एक कौम को वहां पे, यानी उसने फतह कर लिया उस कौम को, ठीक है। कुलना, हमने कहा, इस बात की वजह से बाज ने ये सोचा कि शायद वो नबी थे, हमने कहा या दल करनई, ए जुल करनई, इम्मा अंतु अजीबा खा ये कि तू अजाब दे, वह इम्मा, और चाहे ये कि तू تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, ان کے معاملے میں بھلائی کرے, بھلائی اختیار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ذوالقرنین کے دل میں کہ ظاہر ہے اس کے پاس اتنی پاور تھی نا کہ میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہوں, چاہے تو میں ان کو سزا دوں یا چاہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کیسا بادشاہ تھا کہ چاہتا تو بالکل خون خرابہ کر سکتا تھا. جیسے فاتحین جب کسی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا حال کرتے ہیں, آپ تتاریوں کا اگر آپ پڑھیں کبھی, استغفر اللہ کہ دنیا میں جدھر گئے انہوں نے اتنی تباہی کی, اتنا ظلم و ستم کیا. اور اکثر فاتحین ایسے ہی کرتے, جس جگہ پہ قبضہ کر دیتے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتے. تو اس نے کہا, اگلی دو آیتیں پڑھ لیتے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. قالا, اس نے کہا, اب اس نے یہ فیصلہ کیا, اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا, جہاں تک وہ ہیں جو ظلم کریں تو ان قریب ہم عذاب دیں گے اس کو, یعنی سزا دیں گے. ثم يرد, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹے گا تو وہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر سخت عذاب دے گا. انسان کا تو عذاب نکرا نہیں ہو سکتا, اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ تو بہت سویر ہے, بہت سخت ہے. اس لیے اپنی سزا دینے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ نکرا, اللہ تعالیٰ نے جب سزا دینی ہے تو وہ نکر ہوگی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لا کے صالح عمل کرے, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو اس کے لیے اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ان قریب ہم اس سے کہیں گے اپنے حکم میں سے آسان بات. تو اب جب اس کے پاس یہ اتھارٹی آئی کہ آپ چاہے تو وہ ان کے ساتھ نرمی برتے اور چاہے تو ان کے اوپر سختی کرے, مگر اس کی نیچر یہاں سے پتہ چلتی کہ وہ کیسا انسان تھا, وہ کتنا انصاف پسند تھا, کتنا اچھا آدمی تھا, کہ اس نے یہ کہا کہ میں جو ظلم کرے گا, جو ان میں سے ظالم ہوگا. اب ظلم کے اندر شرک بھی آتا ہے, ظلم کے اندر قتل و غارت بھی آتی ہے, ظلم کے اندر فسق و فجور اور بھی جتنی ظلم کی قسمیں آپ سب دیکھ لیں, وہ سب ظلم ہی ہیں کہ دوسروں سے زیادتی, چوری, ڈاکے, لوٹ مار, یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے, یعنی ہم اس سے سختی سے نپٹیں گے, اس کو سزا دیں گے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پلٹے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان آخرت پہ تھا, آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بری سزا دے گا. تو ایمان آخرت پہ بھی پتہ چلا, اور یہ بھی پتہ چلا کہ اقتدار نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا تھا, اس کے دماغ پہ نہیں چڑھ گئی تھی یہ کرسی. ٹھیک ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی نیکی اور بھلائی کو کرنے والا تھا, اس لیے کہ جو خود نیک ہوتا ہے نا وہی اس چیز کی ویلیو کر سکتا ہے. اس نے دیکھیں دو گروپ بنائے اس بیس پہ کہ جو نیک ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا, جو بادشاہ ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا. حالانکہ کون سے بادشاہ دیکھتے ہیں, جب وہ کوئی فتح کرتے ہیں کوئی دیکھتا ہے کہ نیک کون ہے ان میں اور بد کون ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا, وہ تو سب کو مارتے ہیں. تو اور اسی طرح جو خود کرپٹ ہوتے ہیں نا, خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی نیک ہے یا بد ہے, ان کو تو جہاں سے ان کی فائدہ ہو رہا تھا وہ تو وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ تھا. اور اس نے کہا کہ جو ایمان لا کے صالح عمل کرے گا پھر ہم اس کو جزا, اس کے لیے جزا انل حسنا. اچھا ایک بات اور پیچھے رہ گئی, یہ پچھلی آیت میں دیکھے, اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا فسوفا, سوفا کا لفظ جو ہے نا تراخی کے لیے آتا ہے, یعنی اس میں تھوڑا سا ڈیلے اس کے لیے آتا ہے سوفا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سا سین جب آتا ہے سیقولون جیسے آیا آگے, تو سین صرف ہوگا تو وہ جلدی ہے, اور سوفا جو ہے وہ تھوڑی سی دیر ہے, دیر کے ساتھ ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی دیر کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا اس کو فوری نہیں پکڑیں گے, उस फौरी सजा नहीं दे देंगे, बल्कि उसको दावत देंगे, तबलीग करेंगे, समझाएं बुझाएंगे, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहता है अपने जुल्म पे, कुफर पे, नाफरमानी पे, जराइम पे, तो सजा देंगे उसको, ठीक है। और जब अल्लाह ताला के पास जाएगा तो वहां पे भी सजा होगी। दूसरा, अब आगे आप देखें, जजा अनिल हुसना, आपको पता है जजा अनिल हुसना जो है ना, हुसना ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट बेस्ट, इससे ऊपर कोई वर्ड नहीं है। हसन है ना, हसन नहीं कहा गया जजा अनिल हसन, हुसना कहा गया। हसन होता है तो मतलब गुड है, लेकिन हुसना है तो बेस्ट है। और ये जन्नत के सिवा कोई और जगह नहीं हो सकती। और इसके लिए उसने, देखें जब जुल्म की बात की तो फिर खुद सजा देने की बात पहले की, और बाद में अल्लाह ताला की तरफ बात की कि वो भी अजाब देगा जब वहां पे इंसान जाएगा ऐसा। और जब ईमान और साले अमल की बात की तो पहले अल्लाह ताला के रिवॉर्ड की बात की, ठीक है। सजा की बात खुद की पहले की, अल्लाह ताला की तरफ से सजा की बात नहीं की। जजा की जब बात की, ईमान और अमले साले पे जो जजा मिलनी है, अच्छी अच्छा रिवॉर्ड मिलना है, उसमें अल्लाह ताला की पहले बात की और बाद में अपनी की। वसर नकुलु लहु मिन अमरीना युसरा, हम भी अपनी तरफ से उसके लिए आसानियां को मामला करेंगे, ईज करेंगे उसके लिए। क्यों ऐसे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसलिए कि ईमान और साले अमल का दुनिया में तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे सकता। जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के पास ऐसे इंसान के लिए अजर है ना, वो दुनिया में मिल ही नहीं सकता। दुनिया में बाज दफा तो ऐसे होता है कि इंसान ईमान लाके साले अमल करता भी है तो बगैर कोई कुछ भी दुनिया में फायदा देखे वो दुनिया से चला जाता है। जैसे बहुत सारे सहाबा, हजरत हमजा हैं, हजरत ये मुआज बिन जबल हैं, नहीं मुआज बिन जबल नहीं, दरबार के दूसरे सहाबी, तो जो शहीद हुए ओहद में, बदर में शहीद हुए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो उनके लिए फिर क्या है? हाँ, मुझे याद आ गया, मुसा बिन उमेर, मैं कहना चाह रही थी, मुसा बिन उमेर हैं, हजरत हमजा हैं, और सहाबा कराम हैं, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो कोई इस्लाम के जो फतुहात थी और इस्लाम का जो अच्छा टाइम आया था बाद में, फ्लरिशिंग का टाइम आया था, इस्लाम जब छा गया था, उरूज का टाइम आता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो बाज दफा इंसान को दुनिया में कुछ भी नहीं मिल पाता, तब भी ये यकीन रखना जरूरी है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से जजाए हसन मिलेगी, हुस्ना मिलेगी, यानी जन्नत। जजाए हुस्ना सिवाय जन्नत की और कोई चीज ही नहीं हो सकती, जन्नत मिलेगी, ठीक है। और दुनिया में मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है, मगर ना भी मिले तो वहां उनके लिए ये है। तो और उसने कहा कि हम भी उसको आसानियां देंगे। देखिए, अब आप देख रहे हैं ना कि जो इकतदार पाता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने आई, ठीक है। अल्लाह ताला अथॉरिटी दे ना, तो फिर इंसान ऐसे ऐसे चॉइसेस करे, यानी उसके पास सख्ती करने की भी, जुल्म करने का भी, उसके पास उस सारे लोगों को मार काट के एक तरफ लगाने का भी इख्तियार था, लेकिन वो कैसा था बंदा, यहां से आपको पता चल गया। और ये भी पता चला कि वो दुनिया के अंदर दीन की तबलीग करने वाला था, इसीलिए उसने कहा ना, ईमान और साले अमल। और हमें भी तो यही सिखाया गया, ईमान और साले अमल, और ये सूरत खत्म भी इसी के ऊपर होगी, ईमान और साले अमल, सारे कुरान में यही है। तो इसका मतलब उसको इल्म था ना, उसने सिर्फ ये नहीं कहा सिर्फ ईमान ले आए, या उसने ये नहीं कहा बस अच्छे अच्छे काम करते रहे, ईमान की खैर है, बस अच्छे काम कर रहे हैं, चैरिटी वर्क कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, बस बहुत अच्छा है, ईमान को छोड़ो। जैसे हमारे यहाँ आज कितना गलत ये कॉन्सेप्ट है, या फिर ईमान ले आओ तो साले अमल की जरूरत ही नहीं। ईमान है ना, हमारा दिल बहुत अच्छा है, अब अगर हमसे नहीं कुछ अच्छे नेक काम होते तो कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, आपको क्या पता हमारे दिल में कितना ईमान है, हमारी नजरों में कितनी हया है। कहते हैं ना, तो यही हमारा भी क्राइटेरिया होना चाहिए जिंदगी में कि जो ईमान और साले अमल करने वाले हैं उनकी कदर की जाए। ठीक है, सुम अतबासा बाबा, फिर वो और एक वेंचर पे निकला, एक और सफर पे निकला, यानी मुसलसल चल रहा है, वो आराम से बैठ नहीं रहा। अब मैंने देखो काफी कर लिया तो इसका मतलब छोड़ो, अब असबाब से मुंह नहीं मोड़ता, असबाब इख्तियार करता है, जो उसको अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं उनको यूज कर रहा है। तो हमारे पास भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फिर हम करते हैं अतबा सा बाबा, हाँ फिर हम करते हैं कि हम उनकी पैरवी करें, यानी कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करें और कुछ करके दिखाएं। तो रिसोर्सेज अल्लाह ताला इसलिए देता है कि आप उनको अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएं। हत्ता इदा बलग मतले अश्शम्स, यहां तक कि वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह, यानी फार ईस्ट में चला गया। ठीक है, वजह दहा, पाया उसको, किसको, सूरज को, तत्लू, कि वो तुलू हो रहा है, अला कौमी ने कौम पर, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, नहीं बनाया हमने लहुम लिए उनके, मिन दूनिहा इससे सूरज से, सितरा कोई पर्दा, हमने सूरज से कोई पर्दा नहीं बनाया, यानी एक ऐसी कौम जिसके और सूरज के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, कोई सतर नहीं था। क्या मतलब हुआ इसका, यानी वो ऐसे लोग थे, सुभान अल्लाह, ऐसी कौम थी, इतनी अनसिविलाइज थी कि ना उन्होंने कोई घर बनाए हुए थे, ना कोई बिल्डिंग्स थी, ना वहां पे कोई पहाड़ दरख्त थे, ना कोई और शेल्टर था जहां पे वो यानी सूरज से बचने के लिए कोई पनाह ले सके, कोई जगह जहां पे जाके मतलब वो बैठ सके। वो ऐसे सूरज के नीचे ही रहते थे, सूरज पे एक्सपोज थे, सूरज और उनके दरमियान कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर, वो ऐसी कौमें हैं आज भी। आपको पता है कि वो उन्होंने एक जगह पे, पता नहीं कौन सी, ब्राजील के कोई जंगल थे शायद, वहां पे उन्होंने कोई कबीला देखा, उन्होंने बस मतलब ऐसे वो रहते थे कि उन्होंने बस अपनी शर्मगाहों पे जरा सा कपड़ा बांधा हुआ था और बाकी सारे नंगे थे। तो यहाँ पे अच्छा मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि इससे मुराद ये भी है कि वो लोग नंगे ही रहते थे, कोई सतर ही नहीं था ढांपने को उनके, इन लोगों का इतना ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने एक्सपोज थे, सूरज से एक्सपोज हो रहे थे, खुद भी इस तरह से भी कि कोई घर बार नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी, दूसरी ये भी कि उनके तन पे कपड़े ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरह के लोग आज भी रहते हैं, हम नहीं जानते, मगर हम सारी जमीन को तो जानते भी नहीं है।